उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में तुम आ जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में तुम आ जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज स्पेशल दिन है, जगदम्बा माँ सरस्वती का पुण्यतिथि दिवस, पुण्यतिथि है। पुण्यात्मा बनाने की विधि मामा ने हर सेकेंड, हर मिनट, हर दिन भिन्न भिन्न रीति से समझाई। पवित्रता की संपूर्णता क्या है उसका अनुभव कराया। परमात्म प्रेम की शक्ति कैसे काम करती है, निश्चय और संबंध कैसे विजयी बनाता है, शक्ति देता है। मम्मा के साथ हमारा विशेष विशेष अनुभव है। क्यों? कि हमारा जन्म ब्रह्मा बाबा के थ्रू हुआ। फर्स्ट मिलन ब्रह्मा बाबा दिल्ली में आए थे। जानती नहीं थी ये कौन है। रजौरी गार्डन में सत्संग के नाम से आई थी, पर सत्य पिता, परम पिता परमात्मा इस पिता द्वारा नई सृष्टि रचते हैं, उसका प्रैक्टिकल अनुभव। इसीलिए मेरा रूहानी जन्म ब्रह्मा मुख से हुआ, परंतु दृष्टि अथवा लाइट से हुआ। मुख से जो वचन बोले वो नहीं समझ में आए, पर जो अनुभव हुआ उससे जन्म हुआ। क्योंकि ज्ञान था नहीं, पहले दिन गई थी। मम्मा ने हमारी पालना की, लायक बनाया, समझ दी, शिक्षा दी, प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल मामा को देखा। मैं कॉलेज से आती थी, उस समय पढ़ रही थी, बीए पढ़ रही थी। कॉलेज से आती थी तो उस समय जगदीश भाई ने एक किताब लिखी थी, उसका प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, एडिशन कराने के लिए मामा को दिया था। हिंदी में लिखा हुआ था हाथ से, उस समय टाइपराइटर नहीं होती थी, मतलब होती थी पर थी नहीं। आज तो कंप्यूटर घर घर में, हर के हाथ में है। तो मामा ने कहा कि अब पढ़ के सुनाओ। तो जब भी मामा टाइम देती थी मैं पढ़ के सुनाती थी, दो पेज, चार पेज, जितना टाइम उनके पास। बहुत धैर्यता से, प्रेम से, कंसंट्रेशन से, जैसे मामा की रुचि से कोई नई चीज सुन रही है। ज्ञान नया नहीं था, वो तो सरस्वती माँ खुद ही ज्ञान की भंडार थी। पर हृदय का सम्मान, प्यार, एक नेचुरल सहयोग और वरदान शक्ति भरने गुप्त सेवा क्या है, ये मामा के व्यवहार से, अटेंशन से, केयर से विशेष लगता था। कि फास्ट तो सुन सकते हैं पर नहीं, बहुत प्रेम से, और उसके बाद फिर इसका महत्व क्या है उस पर थोड़ा समझाने भी देती थी। वो मेरा पर्सनल मिलन हो जाता था, पर्सनल चिट चैट होती थी, बहुत अच्छा लगता था, समझ बढ़ती थी, फायदे वाला था। तो एक दिन मामा ने अचानक, कुछ दिन हो गए थे सुनाते आते हुए, तो एक दिन बुक का तो कार्य पूरा हो गया था, एक दिन मामा ने कहा कि सुदेश आज टीचर वहां रजौरी की जहां क्लास कराने जाती है वहां क्लास नहीं करा रही है, आप जाके क्लास कराओ। दिन का क्लास था माता और भाइयों का, माताएं ज्यादा थी। मैंने कहा मामा मैं क्लास कराऊं, मैं क्या क्लास कराऊंगी, मैंने तो कभी क्लास कराया नहीं है। तो बड़े प्यार से मामा ने कहा जो तुम मेरे को पढ़ के सुनाती हो वो समझ में आता है आया। मैंने कहा हाँ मामा बहुत अच्छी तरह से, अच्छा भी बहुत लगा। और फिर जो आप उसकी गहराई में ले जाते हैं वो तो बड़ा फायदे वाला है। तो मामा कहती हैं जो चीज आपको समझ भी आती है, अच्छा भी लगता है, जीवन में फायदे वाला है, तो वो दूसरों को देने में क्या मुश्किल आता है। कोई क्लास नहीं कराना, सिर्फ आपको क्या फायदा है मेरा वो सुनाना, आपको क्या समझ में आया ये सुनाना। मामा की आज्ञा का पालन करके हिम्मत मामा ने दी, विश्वास रखा, ये स्पेशलिटी थी। ये विश्वास और हिम्मत देना और उमंग उत्साह को बढ़ाना वो पहले से ही मेरे जैसे मामा की शक्ति का एक इंजेक्शन लग गया था। शुभ भावना शुभ कामना जैसे कि मेरे अंदर भर गई, जैसे सुनाया वो तो मैं समझती हूँ सरस्वती माँ ने स्वयं अपनी शक्ति से जो कहा वो काम कर गया। उन्होंने उनको बहुत अच्छा लगा, माताओं को भाइयों को, मामा को कहा मामा नेक्स्ट मंगलवार भी सुदेश को भेजना। ऐसे करते करते मंगलवार जाते जाते मेरा मंगल हो गया, मेरा ही कल्याण हो गया, क्योंकि मुझे कई सारी बातें ज्ञान है। तो ज्ञान तो ऐसा सागर और गागर कभी भरती जाती है, गहराई मिलती का अनुभव होता जाता है। तो ये था पहला अनुभव। फिर दूसरी बारी मम्मा आई तो जो आसपास के सेंटर्स थे दिल्ली के, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, सिकंदराबाद, जो भी नेबरिंग सिटीज थी, 45 कुमारीज आई। मामा ने बहुत अच्छी तरह से सेवा से सुख कैसे मिलता है, प्रभु जीवन प्रभु समर्पण हो जाता है तो अमर पद कैसे मिलता है, मतलब ये बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई। तो मुझे बहुत उमंग और उत्साह आया, अच्छा लग रहा था। अचानक मामा ने कहा काली पर बलि कौन चढ़ेगा? मैंने हाथ उठाया, मम्मा ने मुझे बुलाया और गले से लगाया। वो क्षण ऐसा था जैसे वो प्रैक्टिकल में गीत बज करके कुछ लिखत अनुभव सुनाना होता था, कुछ लिखना होता था। ये ट्रेनिंग थी मम्मा की, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। तो वो तेरे गले में मेरा जीना मरना और जन्म है। ये लगा पुराना सुदेश खत्म हो गई, नई शक्ति भर गई, जैसे मर गई पुरानी दुनिया से, घर गई, मदर साथ थी। कहा ऐसे थोड़ी समर्पण किया जाता है, पूछना पड़ेगा ना, पेरेंट्स की चिट्ठी चाहिए ना। पूछा क्यों नहीं? मैंने कहा मौत तो अचानक आ जाती है, पूछ के थोड़ी आती है। अचानक मौत मर गई मैं तो कहा चिट्ठी तो जरूर चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये अनुभव था। मम्मा ने फिर युक्ति बताई कि छुट्टी कैसे लेनी है, योग कैसे करना है। फिर मम्मा ने ही एक्चुअली मेरे बफादर से मुझे छुट्टी लेकर के दी। वो तो लंबी कहानी, फिर अनुभव हो जाता है, लंबा अनुभव है। समर्पण भी फिर दिल्ली में तीसरी बारी मम्मा आई, तो मैं, मेरे को मामा की सेक्रेटरी बनने का सौभाग्य मिला। तो मामा की विशेषताओं का पता चला, पढ़ के सुनाती थी, फिर मामा डायरेक्शन देती थी, मैं पत्र लिखती थी। तो मामा की भावना, मामा का कितना प्यार से उत्तर देना और ज्ञान की गहराई समझा के, कोई की कमी जिस थी वो व्यक्ति अगर सामने आता था तो कभी ये नहीं महसूस कराया या याद कराई कमी, जैसे कि किसी की कमजोरी को भूल जाना और उनको बल भर के भुलवा देना। तो मामा के ये फिर प्रैक्टिकल में इकोनॉमी कितनी थी जब मधुबन क्या एक्सपीरियंस, हाँ। और फिर मैं समर्पण जो हुई, मुझे बड़ा नाज है, नशा है कि दिल्ली में ऑफिशियली पहली कुमारी पब्लिक में, वो मूलचंद हॉस्पिटल में प्रोग्राम था, तो वहां पर हमारे पेरेंट ने हमको मामा को ही समर्पण किया। तो ये तो इसीलिए बहुत गहरा संबंध मामा के साथ। और मामा की प्रैक्टिकल चलते फिरते शिक्षा कैसे है कि मैं दो तीन कहानी, एक दो कहानी सुनाती हूँ। कन्याओं की थी तो मुझे मालूम है कि टाइम बहुत थोड़ा है, मुरली पढ़नी है। हम पालक साफ कर रहे थे, इकोनॉमी और प्रेम और रॉयल्टी और कैसे सिखाते हैं, तो हमने तो कर लिया। तो कच्ची पक्की पालक जो थोड़ी उस वाली थी, गीली थी, हम वह अलग करके, सूखा पत्ता भी उसके साथ चला जाता था। मामा आई, कहा अपने पालक साफ कर ली। हमने कहा मामा ये तो सहज सा, कहा मैंने तो नहीं किया मदद। हमने कहा ये तो साफ हो गई है ना, तो कहा कि अच्छा जितना मैं खाना होगा उतनी मैं कर सकती हूँ। तो मामा ने वो जो हमने पत्ते सूखे गीले मिक्स बार्क कूड़े के लिए रख समझ के रख दिया, मामा ने उसमें से सूखे पत्ते निकाल लिए, अच्छे पत्ते निकाल करके अलग कर दिए। इतना सा पालक निकल आया। तो कहा जितना मैं खा सकती हूँ, तो इनडायरेक्ट सिखाया इकोनॉमी और अटेंशन और वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी पार्ट बहुत इकोनॉमिकल का था। रॉयल्टी कितनी थी, ब्रह्मा भोजन होता था। जब अच्छा थोड़ा और आगे चलने लगा तो जमीन पर ही बैठते थे, तो भोजन मिलता था तो एक दिन पनीर भी बना, तो सबने जैसे बांटने वाली बांटती थी तो देखा जो बाकी लाइन वाले थे उन्होंने पहले पनीर खाया दाल से भी पहले। मामा ने पनीर वैसे ही रहने दिया, दाल से रोटी खाई। क्या मतलब था? ताकि बांटने वाले को दोबारा पूछना ना पड़े, और जिनका पनीर खत्म हो गया तो वो समझेंगे ना ये थोड़ा और दे दो। ये था एक रॉयल्टी और डिसिप्लिन और कंट्रोल और न्यारापन, हर बात विशेष थी। अच्छा, क्योंकि मुरली का टाइम है और आज विशेष दिन, मम्मा आज विशेष, बहुत सारी बातें तो और हैं परंतु आज मुरली में भी विशेष में विशेष है। सेकंड पॉइंट उसमें है, वो मैं मुरली के साथ जो है वो आप खुद ही सुनेंगे। ओम शांति। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के मधुर महावाक्य, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। ये गीत किस समय का गाया हुआ है? ये इस समय ही हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये गीत की सेकंड लाइन है। ये हमारा कौन सा परिवार है? नंबर वार परिवार बताते हैं। मम्मा ने कहा नंबर वार रिश्ता बताती हूं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान है। विष्णु और शंकर से क्या रिश्ता है? वो हमारे ताया जी हैं, पापा के बड़े बाप भाई है, और हम फिर आपस में भाई बहन ठहरे। अब ब्रह्मा से क्योंकि सूक्ष्म वतन पहले रचा गया तो इसीलिए शंकर और विष्णु हमारे ताया हैं। ताया मैंने फादर के बड़े भाई, उनको बड़े भाई को देख के छोटा भाई फॉलो करते हैं। तो ब्रह्मा सो विष्णु, शंकर तपस्वी स्वरूप अव्यक्त स्वरूप योगी जीवन, तो हमारा वो ताया जी हैं और हम आपस में भाई बहन हैं। ये है अपना छोटा सा संसार, इसके आगे और संबंध अच्छा ही नहीं। भाई बहन माँ बाप इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ा अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पापा, हमारे ग्रैंड पापा का नाम क्या है? शिव। उनका कितना भारी नाम है, सदाशिव। वो कितना कल्याणकारी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सर्वात्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोला नाथ शिव। फिर तो महादेव, वास्तव में महादेव को बनाने वाला वो सारी सृष्टि का हर हर कहा जाता है। क्या हरता है? दुख हरता है, सुख करता है। उस द्वारा हमें क्या मिलता है? हक मिलता है। कौन सा? हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा वर्षा मिलता है, हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, शांति धाम घर बेहद का घर हो जाता है, कोई कर्मों का वहां हिसाब किताब नहीं है। परंतु ये दोनों वस्तु सुख और शांति का आधार क्या है? पवित्रता। परसेंटेज जितनी पवित्रता की ज्यादा है उस हिसाब से शांति। परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले संपूर्ण पवित्रता सुख, और पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है तब तक वर्षा नहीं मिल सकता। सुख और शांति का वर्षा पवित्रता के आधार से है। देखो, ब्रह्मा को शिव बाबा ने अपने बेटे को ब्रह्मा को के ऊपर कितना बड़ा काम रखा, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। क्या काम दे दिया? मलेच्छ, पांच विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गोल गोल बनाते हैं पवित्र बनाने का। जिस सेवा का, अलौकिक कार्य का जो भगवान ने ड्यूटी दी, अलौकिक कार्य का रिवार्ड अजूरा, सत्युग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण रूप में पहला पद मिलता है। अब देखो, उस पिता के साथ, पापा के साथ एंड ग्रैंड पापा के साथ, दादा के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है? कैसा सुंदर अलौकिक परलौकिक संबंध है। तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब संबंध के आधार से हर एक को अपने दिल से पूछना है, हर एक अपनी दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। सोचना चाहिए, जबकि परमात्मा बाप आया है तो हम उनसे कंप्लीट वर्षा ले लेवे। फिर हम स्टूडेंट भी हैं, स्टूडेंट का काम है खाली वर्षे की तक सीमित नहीं है। संबंध है स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट का। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ करके स्कॉलरशिप लेना। तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें? वो है विजयमाला में पिरोए जाना। बाकी कोई जो कोई कोई ऐसे हैं जो दो लड्डू पकड़ के बैठे हैं। किसके हाथ में दोनों लड्डू है? दोनों लड्डू लेना चाहते हैं, दो लड्डू कोई कोई दो लड्डू पकड़ कर बैठे हैं। यहां का हद का सुख और वहां भी वैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे, सुख का लड्डू। यहाँ का सुख, कलयुगी दुनिया का सुख भी चाहते हैं और सतयुग का भी सुख चाहते हैं। ऐसा विचारवान, ऐसे विचार वाले को संपूर्ण पुरुषार्थी स्कॉलरशिप लेने वाला नहीं कहेंगे। मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, सर्वोत्तम पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। दो नाव में पाव रखने वाला या दोनों लड्डू हाथ में लेने वाला। तब बाप, अब जब बाप देने आया है तो आनाकानी नहीं करता, देता ही है। देने वाला देता रहता है, लेने वाले क्यों करते हैं आनाकानी। तब गुरु नानक ने कहा है, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की ताकत नहीं है। तो ग्रंथ साहब में ही आता है, देंदा दे लेंदा थक जाए, लेवे तो जुगा जुगंतर खाए। ये पंजाबी में है, सिंधी में है। देंदा दे, देने वाला देता ही रहता है, लेंदा में लेने वाला थक जाता है। वो इतना भगवान देता है जो लेने वाला थक जाता है। अगर लेना लेता रहे देने वाले से तो युग जुगांतर तक वो खाता रहेगा। जुगा जुगांतर खाई खा और खेला। तो फर्क है देंदा दे, पर थक जाते हैं लेते हुए। तो देने वाला तो देता है, लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी ये पद पावे, क्यों नहीं ले लेवे, परंतु थक जाते हैं ना। परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? कि माया का राज समाप्त होने वाला है, वो फाइनल फोर्स लगाती है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, वो जो आत्मा के अंदर शक्ति सत्य संबंध परमात्म संबंध का रस था वो निकाल दिया, तब परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है, यानी सब संबंधों का रस, माता पिता बंधु सखा स्वामी साजन, ये सब संबंध उसमें सब रस समाया हुआ है, यानी सब संबंधों की रचना मिलती है, तभी महिमा है। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, ये महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। और ये किस समय की महिमा है? कब की महिमा है? इस समय की है, ये संगम युग की है, इस समय की है, जो ऐसा संबंध मिले बाबा के साथ। तो परमपिता परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है, सिर्फ पिता नहीं, टीचर नहीं, सतगुरु तक नहीं, सखा साजन सब, जो 21 जन्म के लिए सुख प्राप्त हो जाए, यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। जन्म जन्मांतर खाता रहे, ये पुरुषार्थ की सिद्धि है। परंतु क्या 21 जन्म मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। ये उस 21 जन्म का नाम सुन के ठंडे मत पड़ जाना, थक नहीं जाना, ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना 21 जन्मों के लिए इतने समय का पुरुषार्थ भी करें, फिर कौन सी बात है जो रुकावट डाल देती है? 21 जन्म के बाद भी गिरना तो है ना, ये रुकावट है, ये ब्लॉकेज है। अभी मकान नवा बनता है, 100 साल के बाद पुराना हो जाएगा, अरे क्या करना है बना के, पुराना तो हो ही जाएगा ना, कहेंगे कैसा? तो ये गिरना है तो सिद्धि क्या हुई ऐसा सोच लेते हैं। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। तो बाप आकर के, वो पहले तो बताया था मम्मा ने बाबा ने कि 21 जन्म में पहला जन्म तो ये है, संपूर्ण पवित्रता और संबंध का सुख तो इस समय है, 20 जन्म है ना बाकी के। तो बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे ना। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की कमी हुई ना, कमजोरी तो हमारी है ना, हम थक गए ना। सत्युक्तता का सुख का आधार क्या है? सत्युक्तता के सुख का आधार क्या है? जैसे सुख शांति का संगम युग पर भी आधार क्या है? संपूर्ण पवित्रता। ऐसे ही सतयुग त्रेता का सारा सुख किस आधार पर है? इस समय के पुरुषार्थ के आधार पर है। जब गिरना ही है तो पुरुषार्थ क्यों करे, वो गिरा देता है, इसलिए पुरुषार्थ पर आधार है। तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं, क्यों ना पुरुषार्थ करके वर्षाले में। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए करता है, सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। सुख से तो कोई न्यारा, सुख से न्यारा दुख से न्यारा होने का पुरुषार्थ करता। तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाप से मुक्त करेंगे। अगर कोई पुरुषार्थ नहीं करता है तो ड्रामा अनुसार अंत का जो सीन है, कर्म का हिसाब किताब का साक्षात्कार करा के सजा से पवित्र बना के फिर मिलता है वर्ष। फिर सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। ये परमात्मा का कार्य है और वो अपने मुकर्रर समय पर आकर आप पे ही पवित्र बनाता है। अब जब आत्माओं को आपको फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाएं। मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता। इसीलिए वो आकर के पहला काम क्या करते हैं? आत्माओं को स्वच्छ बनाते हैं। फिर दूसरा काम बल भरते हैं, वो स्वच्छता और पवित्रता से जो बल भरते हैं उस शक्ति से, उस बल से, हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके उनकी सत्व प्रधानता होती है, सत्व प्रधान बनाते हैं। जिसको हम कहेंगे कि अभी गोल्डन एज में आ जाते हैं, तब ये तत्वादी भी गोल्डन स्टेज में आ जाते हैं, परंतु एज स्टेज से पहले आत्मा की, गोल्डन एज आने से पहले क्या बदलती है? स्टेज बदलती है, सत्व प्रधान स्टेज बनती है। तो आत्माओं को बदलाने वाला अर्थात आत्मा को प्यूरिफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो ही हो गया ना, बाबा ही अथॉरिटी है ना। तुम देखते हो ना, अभी दुनिया बदलती जा रही है, पहले तो हमको अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे तो उसके आधार पर दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया, हमने अपने को ही नहीं बदला है, फिर दुनिया कैसे बदलेगी? इसलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता मेल रखने वाले बिजनेसमैन अपना खाता देखते हैं रोज कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं। तो अपना पोता मेल रखना है कि हमारा कितना फायदा रहा और कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा हो गया, चलो चेक किया, कुछ नुकसान ज्यादा हो गया, तो फिर क्या करना है? सिर्फ पश्चाताप करते रहना है? नहीं, खबरदार रहना है तो जरूर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे ना, रिपेयर करना है ना उसको, चेक करना है। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से हम फिर फायदे में जाते हैं, जो अपनी पोजीशन है उसको पकड़ करके चलेंगे। ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। चेक करो, चेंज करो। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वो तो पीछे बनेंगे ना, फिर कौन सा लीकेज है, कौन सी कमी आ जाती है। जैसे अभी हैं वैसे ठीक है, केयरलेसनेस नहीं, केयरलेस नहीं होना है, खबरदार रहना है। अभी से वो देवता ही संस्कार अभी बनाने हैं। अभी तक जो पांच विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि हम उन विकारों से छूटते जा रहे हैं। वो परसों की मुरली, पुराना संसार और पुराना संस्कार छूटते जा रहे हैं। हमारे में क्रोध, जो आदि क्रोध आदि था, वो निकलता जा रहा है। लोभ या मोह आदि जो था, वो सब संस्कार बदलते जा रहे हैं। छूटना माना बदलते जाना। अगर बदलते जा रहे हैं तो छूटते जा रहे हैं, मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते तो समझो अभी हम बदले नहीं हैं। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, तो हम ही नहीं बदले हैं। तो अपने परिवर्तन का, बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं थे जैसे थे वैसे ही चल रहे हैं, ऐसे नहीं सारा दिन विकारी खाते में चलते रहे। हाँ, बाकी हमने अच्छा कुछ काम किया, दान आदि दान पुण्य कर लिया, और बाकी विकारी खाता, बाकी समझे कि हमने तो अच्छा दान पुण्य किया बस। परंतु नहीं, और गहरी चेकिंग है। हमारा जो कर्म का खाता है उसको संभालना है। क्या संभालना है, क्या चेक करना है? हाँ, दान कर दिया, सहयोग दे दिया, किसको कुछ खुशी दे दी, वो तो दे दी। बदलने का आधार क्या है, क्या चेक करना है? कर्म चेक करना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो, अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते। इसमें अपने को संभालना है, ये सारा पोता मेल रखना है। तो सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। कई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे भी मिटाना है, नया भी बनाना है, श्रेष्ठ कर्म और पिछला मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो। तो हमने कितना समय याद किया? क्योंकि ये चार्ट रखने से दूसरे दिन सावधान रहेंगे, ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे तो हमारे अच्छे कर्म चलते रहेंगे, फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से भी बचना है। अच्छा, मीठी मीठी माँ का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये एक अव्यक्त संदेश शुरू का है, अर्ली डेज, बिल्कुल बिगनिंग के समय। ब्रह्मा बाबा को भी ये जल्दी महसूस नहीं हुआ कि परमात्मा शिव आ गए हैं। ये धीरे 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 बाबा ने जो भेद खोले वो छोटे बच्चों को साक्षात्कार करा के, संदेशी के तन में अनुभव करा के, वतन में उनको कुछ दिन रख के एक्सपीरियंस करा के, तो ये एक वो उस समय का संदेश है जो बाबा ने, शिव बाबा ने डायरेक्ट मम्मा से बात की है, बहुत प्यार से, रिस्पेक्ट से, संदेशी कीर्तन द्वारा सरस्वती माँ से अव्यक्त प्रभु की मिलन व संवाद। ये संवाद सुनो, अव्यक्ति प्रभु का मिलन एवं संवाद। बेटी श्री राधे, ये डायरेक्ट बोल हैं, बेटी श्री राधे तेरे पास, देखो तेरे पास कौन आया है, संदेशी के तन में कौन आया है, कौन पधारा है, कितनी बड़ी ताकत तुमसे बात कर रही है, मेरे आने के राज से निराकार पर तन में प्रवेश करके, संदेशी के तन में मेरे आने के राज से तुम खुद को जान सकती हो। आने वाली पोजीशन के साथ, आने वाले की पोजीशन, भगवान की पोजीशन के साथ साथ खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकती हो। तो बाबा खुद आके बताते तेरी पोजीशन क्या है। हे राधे बेटी, हे राधे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो? मैं चाहूं तो एक सेकंड में विनाश करा सकता हूं, परंतु करता नहीं हूं। क्या राज है इसके पीछे? क्यों? क्योंकि विराट फिल्म अनुसार, बेहद के ड्रामा अनुसार, जो भी कर्तव्य जिस द्वारा जैसे प्ले होना है वो अवश्य प्ले होगा। ऐसे नहीं लास्ट सीन पहले हो जावे, पहला सीन बाद में होवे। ये राज है। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे को जानने वाला ही अनादि कायदों की पहचान आकर के देता है। तभी बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं भी बांधा हुआ हूं ड्रामा में। यही मतलब है, अनादि कायदे अनुसार अनादि कायदों को जानने वाला अनादि कायदों की पहचान देता है। टाइम पर ही हर सीन खुलता है। ये सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता है। तो प्रैक्टिकल प्ले होने में समय लगता है। कहानी जल्दी सुनाई जा सकती है पर प्ले होने में टाइम लगता है। अगर इतने वर्षों का खेल एक सेकंड में पूरा कर दूं तो बाकी खेल क्या चले। तो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी है अथवा सहन करनी है वो वैसे ही उसी अटपटे राज से रिपीट होती है। उसमें बहुत राज समाया हुआ है अटपटे राज से। ये अटपटी रिपीटिशन है जिसको हे प्यारी मम राधे तुम और मैं देख कितना हर्षित होता। हे प्यारी मम राधे मेरी राधे तुम और मैं ब्रह्मा के इस राज को देख कितना खुश होता हूँ। इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट, ये ड्रामा के सभी पार्ट समय पर क्या है, टेस्ट लेने वाले। इस खेल को चलाने वाला यानी टेस्ट लेके पास विद ऑनर बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, परंतु करण करवण हर सब कुछ कर सकता है। इस खेल को चलाने वाला चाहे तो, अगर चाहे तो एक सेकंड में इस ड्रामा को ड्रॉप करके फिर नए सिरे से शुरू कर देवे, परंतु करता नहीं है, प्रकृति के नियम को तोड़ता नहीं है, बंधा हुआ है उसमें, ड्रामा की लॉ में बंधा हुआ है। क्योंकि ईश्वर भी, ईश्वर को भी इसी साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। क्यों? स्वयं सर्वशक्तिमान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में है और श्लोक में है। टिक बाय टिक 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 घड़ी उसी अनुसार चलेगी ना। ऐसे तो नहीं घड़ी की सुई घुमा दो, 8 से 12 बजे कर दो तो 12 बज जाएंगे। मैं ये मिसाल दे रही हूं, इसमें नहीं है। बाबा सृष्टि की आदि मध्यंत की कहानी सुनाता है, ड्रामा हम बनाते हैं, ड्रामा हम करते हैं, ये समझने की बात है। कहानी सुनना ड्रामा नहीं है, उसको एक्ट में लाना ड्रामा है। तो साधारण ही चलाना पड़ता है क्योंकि साधारण वेश में है। यही तो भूल भुलैया का खेल है, मेज है नए सृष्टि, जिसको जो जाने वो जानी जाननहार। इस बात को जो समझ ले वे जान जावे, ज्ञानी तो आत्मा बन जाए। बेटी बेटी श्री राधे, उस समय पार्ट टेस्ट का चल रहा था, बहुत बंधन थे, 7-7 तालों में बंद थी बहने। आपने सुना होगा दादियों की कहानी। बेटी श्री राधे प्रिय वत्सों को ये सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। यदि मैं पिया चाहूं तो अपने वत्सों प्रति इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूं। गंगे दादी की कहानी, गुलजार दादी की मदर ऑलराउंडर की कहानी, कितने कितने तालों में बंद थी, 7 ताले 10 ताले फिर 10 ताले, हर बात पर पहरेदार, हर दरवाजे पर पहरेदार खड़ा था, कैसे छूट के आई। तो बाबा ने कहा मेरे बच्चों को मैं चाहूं तो सहज मार्ग बना सकता हूं, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी ये मेरे हाथ में है। अगर किसी धनवान भगत को किसी देवता का साक्षात्कार करा दूं, अभी आई बात यज्ञ चलाने की, पहली बात थी सहन करने की, फिर है सहयोग की बात, भाग्य बनाने की बात। अगर मैं चाहूं तो साक्षात्कार की चाबी तो मेरे हाथ में है, धनवान भगत को किसी देवता का साक्षात्कार करा दूं तो वो अपना सारा धन यज्ञ में ले क्या के स्वा कर देवे, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है। फिर मम्मा को बाबा कहते हैं, लेकिन तेरा पिता राधे बेटी चाहता है कि मैं अपने बैगर्स प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं, गरीबों को मैं बादशाह बनाऊं, बैगर टू प्रिंस बनाऊं, शाहूकार को शाहूकार नहीं। इसलिए तुम ये सब सहन करने के बाद ही प्रिंस और प्रिंस बन जाएंगे, प्रिंसेस बन जाएंगे। पिता जानता है कि वत्सों को यह सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है। क्यों? ये भी एक गुण है। ये सहन करना ईश्वरीय व दैवी गुण है, जिसमें यह आ गई ना आर्ट सहन करने की, यह भी कला होती है सहन करने की भी। अगर आ गई तो खुशी समाई हुई है। इस गुण से ईश्वरीय सुख महसूस होता है। वो गीत है ना, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम तो हैं तेरे दीवानों में। वो कोई परिस्थिति नहीं लगती। ये ईश्वरीय गुण है, सुख समाया हुआ है। सहन करते भी तुम कितनी मौज मनाते हो, यज्ञ में कितना आनंद के सीन चलते थे। ये गोपनीय ज्ञान है। तो ऐसा अनासक्त योगी ही स्थाई सुख को प्राप्त कर सकता है। ऐसा अनासक्त योगी गुप्त स्थाई सुख को प्राप्त कर सकता है। अभी तो परीक्षाओं का समय नजदीक आ पहुंचा है। हर एक वत्स आने वाली परीक्षाओं को एडवांस सामने रख इस अभ्यास में चलता चले। भल कोई वत्स को खान पान इत्यादि न भी मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह उपस्थित हो, ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण करनी है। ए दादियों ने कितने कितने दिन नहीं खाया, बंद थी किसी हाथ का तो। अवस्था समय आने पर ऐसी सुंदर अवस्था अपन धारण करनी है। अगर कोई समझता है जब ऐसी अवस्था आएगी ना कुछ नहीं मिलेगा, मैं आप ही चल जाऊंगा, उस समय देख लूंगा, लेकिन ये समझ के बैठना क्या है? अपने को धोखा देना है। इसलिए पहले से सावधान होके रहना है। मेरे अति प्रिय वत्स याद में तो बैठते हैं, अभी हम सब के लिए बोल रहे हैं बाबा। मेरे अति प्रिय वत्स याद में तो बैठते हैं, परंतु कैसी याद चाहिए? अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता। जब हर एक जब लाइट स्वरूप उपस्थित होंगे, ये कंबाइंड फोर्स भट्टी, तो उनके योग का तेज मेरे वतन तक आएगा और उन हर एक की संपूर्ण लाइट उनमें प्रवेश होगी। उस समय फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। तो हर एक को अपने निश्चय में स्थिर रहना है। पुरुषार्थ में संपूर्णता, पास विद ऑनर, चेकिंग में सावधान, कर्म करते भी सावधान, माया कैसे लापरवाह बनाती है, पांच बारी सावधान सावधान आइए। अब आई निश्चय की बात, हर एक को अपने निश्चय में स्थिरियम रहना है, इतना पक्का निश्चय जो मैं भी उतारू ना तो उतर न सके, टेस्ट आवे पर बेस्ट पास होवे। मम्मा को हे श्रोमणि शक्ति राधे, हे श्रोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान निष्ठा बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। ये मम्मा को शिव शक्ति सेना तैयार करने के लिए बाबा बोल रहे हैं। तुम्हें अपनी एक रस दृष्टि से हर एक को नजर से निहाल करके अपनी मधुर वीणा से पहचान देनी है कि मैं कौन हूं, मेरा पिता कौन है और कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है। तो जब इस अंत के समय जो ये प्रत्यक्षता ही अंत के समय डेविल वर्ल्ड को खलास कर अपने निज देश डीएटी वर्ल्ड में ले जा रहा है, हे राधे बेटी, जब हर एक की अवस्था दीपक की ललाट सदृश, ललाट लबने दिया हिले नहीं तूफान में, जब हर एक की अवस्था दीपक की लाट मैंने लाइट फ्लेम की तरह सदृश स्थिर रहेगी, हवा चले तूफान आवे पर लाइट जगती रहे, तो आत्मा की स्टेज कैसी हो जाएगी? तब सूक्ष्म अंत प्रेरणाओं को पकड़कर अपना संपूर्ण रीति से कार्य सिद्ध कर सकेंगे, अपना कार्य संपूर्ण रीति से प्रेरणाओं को पकड़ करके सिद्ध कर सकेंगे और जितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी उतनी ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे। योग और ज्ञान धारणा तीनों चाहिए। जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे, नहीं एक घंटा दो घंटा नहीं, लगातार उस अवस्था में रहेंगे उतना संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगी। ओहो ओहो बेटी राधे, मेरा स्वरूप तो देखो, क्या वत्स मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते कि कैसे अखंड ज्योति तत्व से आकर मैं साक्षात प्रवेश हो आए बात करता हूं। मेरे द्वारा ही ये साक्षात्कार होते हैं क्योंकि मैं सभी का मूल समूह हूं। देखो प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट, ये प्रकृति के शरीर में बाबा ज्ञान का सागर लाइट के प्रवेश करते हैं। बस सिर्फ ये विचार करें कि यह जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है वो स्वयं सर्वशक्तिवान इस ईश्वरीय यज्ञ में हम वर्षों के सन्मुख पधारा है, वो सर्वशक्तिवान बाप हाँ ब्रह्मा तन में अभी प्रवेश होकर के हम वत्सों के सन्मुख पधारा है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। अगर रचना को रचने वाला मिल गया, उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाऊं? हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट होती हैं, उस पहचान में आ गए तो ये गोद छोड़ना संभव हो जाएगा। ये पहचान लिया ये कुछ की गोद में आया हो तो गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। जब द क्रिएटर पहचान आ जाए तो समझे कि ये कौन है। समझा? समझा शिरोमणि राधे? अच्छा, वरदान। सदा अतीन्द्र सुख के झूले में झूलने वाले, सदा संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न है वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं ना, उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति ब्राह्मण संपन्न, सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला कौन सा है? अतीन्द्रिय सुख का झूला। इसी झूले में झूलते रहो, कभी देह अभिमान में नहीं आना। जो देह अभिमान में आते, झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते तो मैले हो जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्र सुख के झूले में झूलते हैं, मिट्टी में पांव नहीं रखते। स्लोगन, ध्यान से सुनने वाला बात, मैं त्यागी हूं, त्याग किया ये दिया, मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। त्याग का त्याग ही सच्चा त्याग है। अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब स्वयं को अकाल मूरत आत्मा समझेंगे तो अकाले मृत्यु से, अकाल से, अकाल मैंने जब काल पड़ता है, खाना नहीं मिलता, अकाले मृत्यु से, दूसरा अकाल से यानी प्राकृतिक आपदाओं से, तीसरा सर्व समस्याओं से, चौथा मानसिक चिंताओं से, मानसिक परिस्थितियों को हटाने वाला ये एक ही साधन है। अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटा देना, दे अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाती हैं। ओम शांति। मम्मा का पॉइंट, निष्काम वृत्ति से गुण द्वारा दुश्मन को भी मित्र बनाने की शक्ति। मम्मा सदा निष्काम भाव से सबकी पालना करती थी। कोई मान देवे या ना देवे, कोई बात माने या ना माने, मम्मा सदा सबको सहयोग देती रही। वह भी मुझे कुछ दे ये भावना नहीं रखी, इसलिए विरोधी भी सहयोगी बन गए, दुश्मन भी मित्र बन गए। ऐसे ही हम हरेक की सेवा निष्काम भाव से करके हमें दुश्मन को भी मित्र बनाना है। ओम शांति।
ओम शांति। आज हमारी बहुत बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी मम्मा का अव्यक्ति दिवस है, और मम्मा के साथ के पुरानी दीदियों के बहुत गहरे अनुभव हैं सुनते जाएं, सुनते जाएं, उन्हीं यादों में खो जाएं। आज का दिन तो मम्मा माँ के प्यार में खोने का दिन है, तो आज खास दिन है। क्लास में भी अगर 5-10 मिनट लेट हुआ तो भी सबको बैठना है, किसी को उठना नहीं है, क्योंकि इंद्रदेव भी बहुत खुश हो गए हैं, वह भी अपनी खुशी उजागर कर रहे हैं, इसलिए वो भी मम्मा को बहुत कुछ वरदान देते हुए भरपूर करते, वरदान तो देने वाली मम्मा है, लेकिन उन वरदानों का भी इंद्रदेव भी पूरा पूरा लाभ ले रहे हैं और बहुत खुशी से फुहार और बहुत खुशी से अपनी भावनाएं भी प्रकट कर रहे हैं। तो आज के दिन हम सब प्यारी मातेश्वरी जी के पास वतन में जाएंगे और प्यारी मातेश्वरी जी को भोग स्वीकार कराएंगे। जो वतन में मम्मा के पास जाएंगे, वो हाथ खड़ा करो। सबको ही जाना है, किसको भी मिस नहीं करना है, सबको जाना है। तो आज के दिन हमारी प्यारी मम्मा को हम क्या भोग स्वीकार कराएंगे? 21 प्रकार का फल है और साथ साथ टोली है। और भोग के बाद जब आप सबको मिलेगा, फल की थैली मिलेगी और उस थैली में 9 प्रकार का फल होगा और 4 प्रकार की टोली होगी। पहले हम बता देते हैं कि भोग की थाली में क्या क्या हमने रखा है वो बताते हैं, फिर उसके बाद पहले है अंगूर, क्योंकि 24 जून मातेश्वरी जी का दिवस और अंगूर न मिले ये कभी हो नहीं सकता है। और यहाँ आप सबको मालूम है बाबा के बगीचे में एक बहुत बड़ी अंगूर की बेल थी और बाबा उस अंगूर की बेल से वो अंगूर सभी स्थानों पर भेजा करते थे, भारत के विभिन्न स्थानों पर। तो 2 प्रकार के अंगूर हैं, आम है, नाशपाती है, लीची है, अनार, केला, इलची केला, 2 प्रकार का केला, 2 प्रकार के आम है, प्लस पपीता, हरे बादाम, तोतापुरी आम, आड़ू, चीकू, बबू क्योशा, मौसमी, नारंगी और संतरा, चेरी, अमरूद और खुरमाने, ये भोग की थाली में है, टोली भी है। और आप सबको जो फल मिलने वाला है, फल है 9 प्रकार का फल और 4 प्रकार की टोली, 2 नमकीन 2 मीठी, ये है 4 प्रकार की टोली, 2 नमकीन 2 मीठी। और ये है प्लम्स और ये 2 अंगूर, देखिए चीकू, ये नाशपाती, मौसमी, ये आम और ये आड़ू और इलची केला, बड़ा केला, इस प्रकार से है। तो आप सबको ये फल मिलेगा, लेकिन पहले प्यारे बाबा को भोग स्वीकार, प्यारी मातेश्वरी जी को हम सब मिलकर के भोग स्वीकार कराएंगे। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे, उसके बाद हमारे डॉक्टर प्रताप भाई यहाँ बैठे हैं, कल सुबह विदेश यात्रा के लिए अमेरिका जा रहे हैं, संदेश के बाद आपको यहाँ क्लास में आएंगे, सबसे विदाई लेंगे। और उसके बाद सभी भाई बहने, क्योंकि इंद्र देवता भी बहुत खुश हैं, इसलिए वो आप सबको भोग की जो थैली मिलेगी वो मिलेगी हिस्ट्री हॉल के पीछे, 2 लाइन में होगा, एक लाइन में मैं बांटूंगी, एक लाइन में हमारी सुरेश दीदी भोग का फल बांटेंगे, तो वहां पर ही आप सबको मिलेगा। तो पहले से हम आपको बता दें, प्यारी मातेश्वरी जी जितना निर्माणचित, जितना गंभीर, उतना ही हमको साइलेंस बना करके रखना है और अव्यक्त स्टेज में रहना है। तो अभी हम सब चलते हैं प्यारे बाबा के पास, और हमारे बीच में हलधर भाई है, जिन्होंने बहुत प्यार से मातेश्वरी जी के निमित्त एक बहुत सुंदर गीत तैयार किया है। पहले भोग का गीत बज जाए, फिर दूसरा आप है ना, ठीक है? दे अच्छा, अभी आपने मातेश्वरी जी के महावाक्य सुने और बाद में आपने एक बहुत सुंदर संदेश सुना। वो संदेश कब का है? वो ऑल माइटी फादर का। तो उस समय शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई और यज्ञ की स्थापना में और खास करके प्यारी मम्मा के निमित्त ऑल माइटी फादर आए और ऑल माइटी फादर की प्यारी मम्मा के साथ मुलाकात थी और ऑल माइटी फादर ने मम्मा से क्या रू रूहान की वो हम सब ने सुना। उस समय अव्यक्त बाप दादा को तो ऑल माइटी फादर कहते थे, मम्मा ने दादियों ने ऑल माइटी फादर से मुलाकात भी की, अव्यक्त बाप दादा से भी मुलाकात की और आप और हम सभी और अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात और साकार में, कईयों ने तो साकार में बाप दादा से मुलाकात की, जैसे दीदी हम हैं, मम्मा से बाबा से साकार में भी मुलाकात की और अव्यक्त बाप दादा से भी मुलाकात की, लेकिन प्यारी मम्मा शुरू में ऑल माइटी फादर हाईएस्ट अथॉरिटी से इतनी जबरदस्त मुलाकात सर्व शक्तियों से संपन्न हो गई। तो हम इस खुशी में प्यारी मम्मा के लिए जोरदार एक बार करतल ध्वनि से हमारी माँ को बाबा ने कितना ऊंच कितना महान बना दिया, तो ये भी हमारे लिए कितना सौभाग्य है कि माँ ने हमें सब कुछ भरपूर कर दिया। तो अभी हम सभी बाबा के वो भोग स्वीकार कराएंगे, भोग के बीच में ही हल्दर भाई गीत गाएंगे, ठीक है? दूसरा गीत इसका
गंजा बाबा की तू गली को हार, उड़ जा प्यारी वतन मेरी ने अंबर के उस पार, हो नीने अंबर के
करते हैं हम करता है ये मधुबन ओ मम्मा तुम क्यों आई मीठी मम्मा की मीठी लोरी रह 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 के याद है आई तेरी ममता तेरा दुलार मन के पर्दे पे आई 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 तेरी ममता तेरा दुलार मन के पर्दे पे आई आई फिर से आया 24 जून फिर से तुम आए दरियाई मीठी मम्मा की मीठी लोरी रह 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 के याद आई।
शांति। आज प्यारी प्यारी मम्मा के निमित्त सभी भाई बहनों की तरफ से याद प्यार लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची वतन में अलग अलग प्रकार की बहुत सुंदर डेकोरेशन थी कहीं पर तो लाइट्स के बहुत रंग बिरंगे बल्ब चमक रहे थे कहीं पर बहुत सुंदर सुंदर फूल ऐसे लहराते हुए दिखाई दे रहे थे कहीं पर कुछ पेपर्स डिजाइन वाले दिखाई दे रहे थे तो मैं कुछ समय तक ये देखती रही लेकिन बाबा और मम्मा वहाँ नहीं थे लेकिन वहाँ पर एक बहुत सुंदर मीठी सी आवाज का म्यूजिक आ रहा था मेरी माँ मेरी माँ ऐसा सुंदर म्यूजिक था उसका आवाज आ रहा था कुछ सेकंड के बाद बाबा मम्मा दूर से आते हुए दिखाई दिए और जैसे नजदीक आए तो वो जो म्यूजिक बज रहा था उसकी आवाज को सुनकर के मम्मा कुछ सेकंड के लिए जैसे कहीं खो जाती हैं ऐसे खोई हुई दिखाई दे रहे थे और मम्मा की आंखों में बहुत ही स्नेह भरी ऐसा प्यार दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मम्मा को कहा, बच्ची देखो ये क्या है। तो मम्मा देख रही है और इतना देखते ही बाबा क्या हुआ, अपने आप को छिपा लिया और मम्मा अकेली और मम्मा के सामने बहुत से भाई बहने और सब प्यार से मेरी माँ माँ ऐसे कह करके अपने मधुर आवाज से मम्मा को जैसे पुकार भी रहे थे, प्यार भी कर रहे थे। तो मम्मा की दृष्टि से उस प्यार के रिटर्न का इतना सुंदर सा जवाब मिल रहा था। तो मम्मा ने क्या किया, ऐसे कहा आओ, ऐसे कहा तो मम्मा की दोनों बाहों में बहुत सुंदर झूला बन गया और सब बच्चे उसमें समा गए और मम्मा दोनों बाहों से सभी को झूले में झूला रही थी। लेकिन उस झूले पे क्या लिखा हुआ था, बाबा ही मेरा संसार है। तो ऐसे मम्मा जैसे बाबा की तरफ ले जा करके उनको प्यार के झूले में झूला रही थी। तो मैंने कहा, मम्मा कई बच्चों का उलहना रहता है कि हमने मम्मा को क्यों नहीं देखा है, मम्मा एक बार हमें साक्षात्कार तो करा दे। मम्मा ने कहा, क्या नहीं देखा है, बाबा साथ है, माँ भी साथ है और पूरा परिवार साथ है, तो हम तो सब साथ हैं। तो क्या हुआ, सबके सामने एकदम हर एक को मम्मा का साक्षात्कार होने लगा और हर एक के पास वो मम्मा के प्यार की जो किरणें थी वो पहुंच रही थी। मम्मा की आंखों से सबके पास लाइट की किरणें पहुंचते, वरदान पहुंच रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद बाबा आए तो मैंने कहा, बाबा आप कहाँ चले गए थे। बाबा ने कहा, आज माँ का दिन है, बच्चों को खुली छुट्टी है अपने माँ से मिलन मनाने का, इसलिए बाबा ने खास बच्चों को निमंत्रण देकर के माँ से मिलन मनाने के लिए ये अनुभव कराया है। और मम्मा तो बाबा को देख ही रही थी। तो मैंने कहा, बाबा आज आप कहाँ गए थे। तो बाबा ने कहाँ गए थे माँ से पूछो। तो मम्मा बहुत मुस्कुरा रही थी। बाबा ने कहा, आज बाप ऐसी अलौकिक माँ को, केवल बच्चों की माँ नहीं है, सारे विश्व की आत्माओं की माँ है, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली है, इसलिए बाप जो है इस माँ को पहले तो भक्तों के पास ले गए और भक्तों के पास जैसे लेकर के गए तो वहाँ क्या देखे, तो बहुत बड़ी स्क्रीन थी और स्क्रीन के ऊपर मम्मा के भिन्न भिन्न देवियों के रूप दिखाई दे रहा था, कहीं सरस्वती, कहीं जगत अम्बा, कभी माँ, कभी काली, इस रूप दिखाई दे रहे थे और सभी भगत हाथ जोड़ करके ऐसे नमस्कार कर रहे थे और हर भगत के पास एक न एक वरदान पहुंच रहा था। बाबा ने कहा, आज जो है वरदान का दिवस है, माँ का हृदय विशाल है, हर बच्चे के लिए माँ सदा कुछ न कुछ देती रहती है, तो हर भगत के पास कुछ न कुछ ऐसे वरदान पहुंच रहा था और किसी के पास तो ऐसे लाइट पहुंचती थी, उनको लगता था कि कुछ प्रसाद मिला है, तो जैसे वो हाथ जोड़ करके अपना मस्तक झुकाते थे। तो बाबा ने कहा, आज के दिन जाने अनजाने में भक्तों की भी मनोकामना पूर्ण करने वाली ये माँ जो है कामधेनु है। फिर बाबा ने कहा कि आज बाबा बच्ची को विश्व के सभी सेवा केंद्रों पर ले गए और केवल अकेले नहीं, और बच्ची के साथ कौन था। तो बाबा ने जैसे कहा उसी समय बच्ची के साथ जैसे मम्मा के साथ सब एडवांस पार्टी के थे, दादी दीदी सब दादियां और वरिष्ठ भाई सब ने क्या किया, मम्मा को घेर लिया बीच में मम्मा, और सब मम्मा से बहुत मीठी मीठी रूहान करते हैं। मम्मा को कहते हैं, मम्मा आजकल तो आप क्या कर रहे हैं? मम्मा कहती हैं कि बाबा का जो कार्य है उस कार्य में आप और हम सभी विशेष सहयोगी हैं। बाबा ने आप सभी को फाउंडेशन के रूप में निमित्त बनाया, अब नई दुनिया के फाउंडेशन में भी आप सभी निमित्त हैं। तो ऐसे जैसे बहुत मीठी मीठी बातें भी कर रहे थे, बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। तो मैंने कहा कि बाबा आज तो सबने बहुत प्यार से भोग बनाया है, भोग लेकर के आई हूँ। तो बाबा के सामने जैसे वो भोग की थाली रखी थी, बाबा ने खोली और खोलते ही मम्मा को कहा इसमें से लो। तो मम्मा ने क्या किया, सबसे पहले अंगूर उठाया और वो अंगूर उठा करके ऐसे किया, सब बच्चों के पास पहुंचा। वो अंगूर नहीं था लेकिन सबके पास एक बहुत सुंदर क्रिस्टल का अंगूर स्टाइल में ही बहुत बड़ा एक क्रिस्टल का था वो, जो सबके पास पहुंचा और उसके अंदर एक चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा था। और उस सितारे के ऊपर क्या लिखा हुआ था कि बीज रूप स्थिति अंतर्मुखता, तो वो दिखा हुआ था। तो मम्मा के देख रही थी, बच्चे भी लेके खुश हो रहे थे। जैसे उनके हाथ में गया तो सब के सब ऐसे फरिश्ते रूप में बन गए। तो फिर बाबा ने जैसे मम्मा को भोग स्वीकार कराया, मम्मा ने खास सभी एडवांस पार्टी वालों को भोग स्वीकार कराया, और भोग स्वीकार कराते ही तो बाबा ने कहा बच्चे आज सब बच्चे वरदान के लिए आश लगा करके बैठे हैं। तो मम्मा मुस्कुराने लगी, कहती है बाप तो हर रोज वरदानों से भरपूर करते ही हैं, लेकिन आज के दिन बच्चों को विशेष वरदान देने के साथ साथ माता पिता दोनों यही चाहते हैं कि सब बच्चे माँ बाप के समान संपन्न बने। और फिर मम्मा ने क्या किया, एक बहुत सुंदर घड़ी दिखाई दी और उस घड़ी में क्या था कि समय तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो मम्मा ने कहा समय की तीव्रता और बच्चों के पुरुषार्थ की तीव्रता में कितना अंतर दिखाई दे रहा है, तो समय को सामने रख करके बच्चों को पहले से ही अपने को तैयार करना है। कई बच्चे अभी भी समय के लिए इंतजार करते हैं। तो मम्मा यही कह रही थी, इंतजार करते करते समय अपना खेल खेल लेगा, लेकिन बच्चों को समय के महत्व और सूक्ष्म स्थिति और साथ साथ अंतर्मुखता और साइलेंस का विशेष अभ्यास करना है। तो जैसे मम्मा ने ऐसे कहा, फिर से वो क्रिस्टल वाला सबके सामने आया तो उसके अंदर जो स्टार दिखाई दे रहा था उसमें वही लिखा हुआ था, समय का महत्व, अंतर्मुखता, साइलेंस और समय और पुरुषार्थ के अंदर गैप ना हो, दोनों के अंदर समानता रहे। फिर तो जैसे मम्मा फिर सबको बहुत प्यार कर रही थी, बाबा तो जैसे पीछे से छिप गए, तो सब बच्चे कहते बाबा कहाँ है। जैसे बाबा आए तो मम्मा बिल्कुल शांत। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे के अंदर कितनी विशेषताएं रही हैं, इस बच्चे ने उन सर्व विशेषताओं पर सूक्ष्म पुरुषार्थ करके उन विशेषताओं को अपना रूप अपने अंदर धारण करके सारे विश्व के सामने एक एग्जाम्पल बने और सब कोई मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी समान बनकर के बच्ची ने सबको भरपूर किया है। तो फिर मम्मा बाबा एडवांस पार्टी वाले सब सामने थे और सब के सब यही कह रहे थे, हम इंतजार कर रहे हैं जल्दी जल्दी बच्चे तैयार हों, और समय जो है वो जल्दी तैयारी कर रहा है, तो समय के लिए बच्चों को विशेष दूरादेशी बन करके समय का पूरा पूरा लाभ लेना है। फिर बाबा ने याद दिया और मम्मा तो फिर हाथ हिला करके सबको स्नेह दे रही थी। मम्मा की आंखों से फिर वही स्नेह की लहरें जो थी वो सबके पास पहुंच रही थी और सबको याद दिया, ओम शांति ओम शांति। सभी भाई बहने बैठे रहे, प्रताप भाई आइए।